The following is a lecture on Akalya Daman Lila from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, Verses 21 through 25, on the topic of the cowherd community distraught. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 3rd, 2000.
कृष्ण की कोई लीला भर सकती है? अकस्मात जहां पर माँ जसोदा शोक में विह्वल होकर उस हृदय में प्रवेश करना चाहती है, वहीं पर अन्य वात्सल्य भागवती गोपियों के हृदय में भगवान का ऐश्वर्य उदित हो रहा है और वे माँ जसोदा को कहने लगी, बहन तुम्हारा पुत्र आएगा, तुम चिंता मत करो, तुम पानी में मत प्रवेश करो। देखो कुछ दिन पहले वो तृणावर्त आया था तो इस तरह से मर गया, निश्चित ही सांप भी मारा जाएगा कृष्ण के द्वारा और कृष्ण आएगा, तुम चिंता मत करो। यह तत्त्व प्रिय कथा ता कृष्ण मातरम अपत्यम अनुपरिष्टम तुल्य व्यथा समनुगृह सुच श्रवंत्य तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन तयासन कृष्णा नने दृश्य मृतक प्रतीका। वे सब गोपियां वत्सल्य भावती गोपियों के लिए कह रहे हैं, मृतक प्रतीता, वे भी मृतक जैसा हो गई थी क्योंकि तुल्य व्यथा, माँ जसोदा के हृदय में जितनी व्यथा थी कृष्ण के लिए तो ठीक तुल्य व्यथा, थोड़ी भी कम व्यथा नहीं थी, उसी प्रकार की व्यथा थी। तो ब्रज प्रिय कथा, ब्रज में श्री कृष्ण क्या क्या किए, कैसे कैसे, इसको कथयंत, ब्रज प्रिय कथा कथयंत कहती हुई, कोई गोपी कह रही है तृणावर्त की कथा, कोई कुछ कोई कुछ, यह विपत्ति आई तो बच्चा बच गया, यह विपत्ति आई कृष्ण बच गया, यह आया तो यह भी एक विपत्ति आया है बहन, यह भी विपत्ति चली जाएगी, ये विपत्ति चला जाएगा, तुम चिंता मत करो, ये करो वो करो, तो उसे माँ को कुछ धीरज आ रहा था। इस प्रकार से कहती हुई वे माँ जसोदा को सांत्वना देने लगी और समनुगृह सुच श्रवंत, जब सांत्वना दे रही थी वे गोपियां तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जसोदा की क्या दशा थी इसका वर्णन तो सुखदेव गोस्वामी कर ही नहीं रहे, तो सुच श्रवंत ये गोपियों का वर्णन है। सुच मतलब शोक के आंसू, आंसू बह रहे थे बार बार और समझा रहे हैं, रो रो करके कह रहे हैं कि तुम धीरज रखो, तुम बहुत पुण्यवती हो जसोदे, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुमने भगवान नारायण की आराधना की है, नारायण की कृपा से तुम्हारा बच्चा बच गया है और आगे भी बचेगा, तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। स्वयं ही रो रही है कह कह करके, सुच श्रवंत रोती हुई और कृष्ण की कथा कह रही है और कृष्ण के आनंद पर ही अर्पित दृष्टि है, कृष्ण के मुख पर ही दृष्टि है, कृष्णानन्यर्पित दृष्टया तुल्य व्यथा, कृष्णानने अर्पित दृश्य मृतक प्रतीका, कई शब्द बहुत ध्यान देने लायक उनके लिए। ता है तुल्य व्यथा और सुच श्रवंत्य कृष्णानने अर्पित दृश्य और मृतक प्रतीका, पर फिर भी ब्रज प्रिय कथा कथयंत ताम कृष्ण मातरम सम अनुगृह्य, बहुत सम्यक रूप से उनको पकड़ लेती हैं, जमुना के हृदय में घुसने नहीं देती, सम अनुगृह्य तो भुजा में पकड़ करके रोकती हैं कि बहन तुम प्रवेश मत करो, रुको रुको, रो रही हैं। और बहुवचन में कई गोपियां इस तरह से भगवान की माताएं रो रही हैं और इनको समझा रही हैं, तो इस तरह से भगवान की लीला है, वो तुल्य व्यथा है लेकिन उनके द्वारा निषेध हो रहा है माँ जसोदा का कूदना, यह है स्वरूप शक्ति का विलास, कभी भी किसी के द्वारा कुछ करा लेना। या श्री बलराम जी उस स्वयं ही स्वरूप शक्ति द्वारा चालित हो, ऐसे उनकी ही शक्ति है लेकिन अपनी ही शक्ति से शक्तिमान परम पुरुष से बंधे हैं, तो उस समय श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का पूर्ण भाव बलराम जी में उगा हुआ है। माँ जसोदा को तो स्त्रियां रोक रही हैं और पुरुषों को श्री बलराम जी रोक रहे हैं और जबरदस्ती रोके। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण प्राण निर्विशतो नंदा दिन वीक्षितम हरदम प्रत्यषेधत् स भगवान राम कृष्ण अनुभाव वेत। भगवान राम बारंबार भगवान शब्द कह रहे हैं बलराम जी के लिए, यहां पर भी अपना बल प्रकाशित किए हैं, इसलिए भगवान भगवान के रूप में बलराम जी कार्य कर रहे हैं। पहले बलराम के रूप में गोप के रूप में काम करते रहते हैं, गाय चराते हैं और सब, लेकिन यहाँ पर भगवान की जरूरत है, यहाँ पर चाहिए बल। तो नंदादिन कृष्ण प्राण तम हरदम निर्विशत वीक्ष। श्री बलराम जी देखते हैं कि नंद महाराज आदि सब गोप अब एक बार ही गंगा जी में, एक बार ही जमुना जी में प्रवेश करना चाहते हैं उस हरद में, तो प्रत्यषेधत उन्होंने रोक दिया, एक समय में सभी को रोक दिया, अर्थात अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया और एक एक व्यक्ति के पास खड़े होकर के प्रत्यषेधत बल से रोक दिया, क्योंकि भगवान बल राम प्रत्यषेधत सब भगवान राम कृष्णानुभावित, कृष्ण अनुभावित, कृष्ण के अनुभव को, इच्छा को जो जानते हैं, कृष्ण की इच्छा को जानते थे, कृष्ण इस तरह से लीला कर रहे हैं सांप के द्वारा आविष्टित होकर के और निकलेंगे, या कृष्ण के प्रभाव को जानते थे, इसलिए प्रत्यषेध प्रतिषेध कर दिए। कैसे? यहां वचन आदि नहीं लिखा गया, गोपियों के विषय में लिखा जा रहा है कि वे माँ जसोदा से कृष्ण की प्रिय कथा जो ब्रज में प्रसिद्ध है वो कह 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 के समझा रहे, लेकिन श्री बलराम जी के लिए एक आया है भगवान राम प्रत्यषेधत रोक दिया, बल का आविष्कार करके रोक दिया, सबको समझाने की फुर्सत नहीं थी, क्या क्या समझा, बार बार प्रवेश करना चाहेंगे तो कितनी कथा कहें और किससे किससे कहें, इसलिए जितने लोग थे उतना रूप बना करके सीधे हाथ पकड़ कर रोक लिए, प्रत्यषेधत नहीं घुसने दिया क्योंकि भगवान है, क्यों रोक लिया, क्योंकि राम है, सबके प्रिय, सबको जीवित रखेंगे, सुखी रखेंगे, कहीं हरद में प्रवेश करके फिर लोग मर जाएं, दुखी हो जाएं, ठीक नहीं समझते थे, राम है इसलिए रोक दिए। कालिये दह के समीप किसकी क्या दशा हो रही है, कौन रोक रहा है, कैसे प्रवेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और कृष्ण की क्या दशा है, सुखदेव गोस्वामी इसका बहुत सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ये तो उन्होंने दिग्दर्शन कराया, थोड़ा थोड़ा वर्णन किया और भक्तों के लिए छोड़ दिया है कि वे अपने मन को अभिनिविष्ट करके उसका विस्तार से चिंतन करें। श्रीमद् भागवत पढ़ करके मनन किया जाता है तो श्रम ज्यादा होता है, आज के युग में खेद की बात है कि लोग मनन नहीं करते हैं, कथा के बाद बस दूसरे विचार में आए, मनन करना चाहिए। कल एक बहुत अच्छी बात मैं सुना श्रीपद लोकनाथ महाराज जी के मुख से, शाम को एक जगह जाना था तो कहते हैं मैं तो इधर आया कि जो कथा सुना हूँ उसका कुछ मनन करूँ, लेकिन तुरंत दूसरे तरफ जाना है तो बहुत अच्छा लगा, वास्तव में मनन करना चाहिए सुने ही बातों का, किस तरह ब्रजवासी घर से चल रहे हैं, किस तरह उनके अंग फड़कते होंगे, भूकंप होता होगा, कितनी चिंता में निकले फिर वहाँ गए, जाने में घंटों लग गया होगा जमुना तट पर, और वहाँ पर जा करके जो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और सब लोग आर्तनाद कर रहे हैं जमुना के दोनों तट पर, तो इसीलिए श्री बलराम जी अपने स्वरूप का प्रकाशन किए सबको रोकने के लिए।
खेलता खेलता कान्हा जमुना में कूदी गईले, नगावा छोड़ेला फुफुकार काली दह में, न गावा छोड़े ला फू फू कर काली दह में छाती पीटी सिरा धुनी रमानंद जस माती छाती पीटी सिरा धुनी रोमानंद जसो माती विपदा के टूटला पहाड़ा काली दह में विपदा के तू चला पहाड़ा काली खेलाता काना जमुना में कूदी गईले नगावा छोड़ेला फूफू कर काली दह में आज कुल देवी देवा मिली के सहाय हो आज कुल देवी देवा मिली के सहाय हो संकट में मोरा प्राण धन काली दह में संकट में जमुना के तीरे पेड़ पताई झुराईली से जमुना के तीरे पेड़ पताई झुराईली से जमुना के तीरे पेड़ पताई झुराईली से काली दह में जहाँ बहे जहरा के धार काली दह में
मैया यशोदा और गोपीगण भी कह रही हैं
जब से नाला मोरा लवती के आई है हो जब से नाला मोरे लवती के आई हो जब से नाला मोरा लवती के आई है हो जई है जिनगी हमार काली दह में संगा जई है जिनगी हमार काली दह में लता खेलता काना जमुना में कूदी गईले नगावा छोड़े ला फूफू कर काली दह में Yeah. फूलाऊ जारा काली दह में कहे संगीत माधव दास हरि गुरु वैष्णवास दैवा प्रभु के उबर काली दह में दैवा प्रभु के उबर काली दह में खेलता खेलता कान्हा जमुना में कूदी गईले गवा छोड़ेला फूफू कर काली दह में नगावा छोड़ेला फूफू कर काली दह
उनको बहुत पसंद है कि लोग रोवे वो खुद ही अपने विरह में रोने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रोते रहे चैतन्य महाप्रभु जितना कार्य इस जगत में किए उन्हें सबसे ज्यादा वे रोए रात में श्री राधा रानी या किसी गोपी के भाव में वो रोते थे तो आसपास के लोग सुनते थे और ऐसा लगता था कोई से कोई स्त्री रो रही है इस तरह से वर्णन करते थे विलाप करते थे और उनके दो मित्र उनके दो सहचर रामानंद और स्वरूप समझाते थे स्वरूप दामोदर और वो भी समझाते थे तो गीत गा करके कि सखी धीरज रखो कृष्ण आएंगे चिंता मत करो चाहे विद्यापति ठाकुर के पद से चंडी दास के या गीत गोविंद से वे मिलन के पद गाते थे तब सांत्वना मिलती थी इस तरह भगवान अपने ही विरह में रोए खूब और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जी भर करके रोए अपनी साध पूरी कर लिए भगवान की एक साध रह गई थी कि श्री राधा रानी के भाव में हम अपनी भक्ति करें अपने से प्रेम करें साध शब्द बार बार आया साध पूरी की अपने गोपों को गौओं को गोपियों को अपनी माँ को पिता को बंधुओं को सबको देख रहे हैं कि लोग छटपटा रहे हैं कुछ लोग मूर्छित होकर गिर पड़े हैं जिसको बलराम जी रोक रहे हैं समझा रहे हैं सब करें फिर भी वे निश्चेष्ट पड़े थे परंतु कुछ ही देर में भगवान का हृदय द्रवित हो गया और वे तुरंत अब दूसरी लीला प्रारंभ करना चाहते हैं उरंग बंध से बाहर आने की इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य शास्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतोः आज्ञाय मर्त्यपदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंगबन्धात् इत्थं अति दुःखितम् इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने देखा इत्थम का अर्थ इस तरह निश्चेष्ट रहे सांप के बंधन में और इसके साथ ही साथ स्वगोकुलम अपने गोकुल को मतलब अपने गोपों को अपने माता पिता को गौओं को गोकुलम से तत्पर गौओं का समूह या सारा गोकुल सारे ब्रजवासी अति दुखितम भगवान ने विचार किया कई बात ध्यान से सुनते जाइए उन्होंने देखा स्वगोकुलम कथम भूतम स्वगोकुलम अनन्य गति जिनके रक्षक जिनका पोषण करने वाला कोई अन्य दूसरा नहीं है श्री कृष्ण ही है तो अपने गोकुल की यह दशा देखकर जबकि उनके रक्षक कृष्ण हैं, कृष्ण के अलावा कोई गति नहीं है। और उसमें भी भगवान ने देखा विशेष करके स्त्रियों को और बच्चों को रोते हुए, तो उनको दया आ गई। शास्त्री कुमार अपने जो गोप सखा थे श्रीदाम आदि, वे तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे, लेकिन जो यहां से बच्चे गए हैं ब्रज से, वे जब चिल्ला करके रो रहे थे तो भगवान को ये सहन नहीं हो। स्त्रियों का रोना बच्चों का रोना तुरंत दया उत्पन्न कर देता है। गोकुलम की विशेषता बता रहे हैं, स स्त्री कुमारम, जब स्व गोकुलम कह ही दिए सुखदेव गोस्वामी, तो इसे बोध हो गया कि सारा ब्रज सब लोग रो रहे, अति दुखी था, लेकिन उसमें स्त्री और बच्चों के साथ ये शब्द स स्त्री कुमारम, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे भगवान के लिए और भगवान ये नाटक कर रहे हैं तो उनको ऐसा दुख नहीं देना चाहिए बच्चों को। किसी भी व्यक्ति को वास्तव में दया आ जाती है, बच्चे रोने लगे या स्त्रियां रोने लगे तो दया आ जाती है। तो भगवान विशेष रूप से देखे कि सब लोग रो रहे हैं, विकल अति दुखितम, अति का अर्थ है कि इससे मर जाना अच्छा है, इतना दुख हो रहा था उनको। अति दुख का यह अर्थ है, दुख सहने की एक सीमा होती है, लेकिन अति दुख का अर्थ है कि मरण से भी ज्यादा दुख, मरण में बल्कि दुख नहीं है, कुछ शांति मिल जाती है, मरण से भी अधिक दुख हो रहा था उनको, अति दुखितम। और किस लिए? आत्म हेतु, भगवान ने देखा मेरे कारण, मेरे लिए दुखित, और मैं इस प्रकार से नाटक कर रहा है। ये भगवान ने विचार किया कि मैं ऐसे पड़ा हुआ, मेरे कारण से स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, पशु पक्षी गोप सब रो रहे हैं, विकल हैं। तो आज्ञाय, उनकी इस दशा को जानकर आज्ञाय मर्त पदवी मनुवर्त मान, कुछ देर तक, मुहूर्तम, मुहूर्तम का अर्थ थोड़े देर तक, कम से कम घंटा से ज्यादा हो जाएगा ये दशा, अब उनके ब्रज से आने में देर हुई होगी तो ढाई घंटा तो मुहूर्त को कहते, ऐसे सब मिलाकर वे काली हरद में 6 घंटा थे सूरदास जी के अनुसार। जुग जाम रहे पर तनिक मिटो नहीं चंदन, चंदन आदि नहीं मिला, फन फन प्रति निरतत नंद नंदन। तो दो याम मान लिए 6 घंटा, तो उरंग के बंधन में भी वे 2-2.5 घंटा रहे, ब्रजवासियों के आने में देर हुई होगी और आने के बाद भी बहुत देर तक विलाप किए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं थोड़े ही काल में, अब जब छूटना है तो पहले का बड़ा दुख भी किसी गिनती में नहीं है, जब मन में आ गया कि अब भुजक के बंधन से उठना चाहिए तो सारा दुख है सुख में बदल गया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुहूर्तम, थोड़े देर तक रहे इसके बाद फिर निकाला पहले बहुत दुखित थे कथा कहते समय। मर्त पदवी अनुवर्तमान, मर्त पदवी मतलब जैसे मनुष्य लीला करता है, सांप के बंधन में आ गया, ये आ गया, निश्चेष्ट हो गया तो कुछ देर रहा, अथवा मर्त पदवी का अर्थ यह है कि भगवान काली को श्री वृंदावन से निकालना चाहते हैं, तो भगवान अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं। वृंदावन से बाहर निकालना यह श्री भगवान का कार्य नहीं, अतः वे मनुष्य लीला कर रहे हैं, लोगों को नंद आदि को दिखाना चाहते हैं यह काली बदमाश था इसलिए निकाला मैं, तो इसलिए उसके बंधन में कुछ देर रहे। सभी ब्रजवासी इस बात से आश्वस्त हुए कि वास्तव में काली दुष्ट है, कृष्ण को पकड़ लिया, डस लिया, ये किया, ये यहाँ रहने लायक नहीं। इसको मर्त पदवी अनुवर्तमान कहते हैं, जैसे अन्य मनुष्य किसी के दोषों को दिखा करके तब उसको दंडित करता है, तो श्री कृष्ण भी कालिये के दोष के प्रदर्शन के लिए कुछ समय उसके बंधन में रहा है, और इसके बाद उदतिष्ठत भुजंग बंधत, उस भुजंग के, उस सर्प के बंधन से उठ निकल आए। निकल आए किस तरह निकले इसका वर्णन करते हैं, तत् प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगस्तो नमैव कुपितः स्वफणान् भुजङ्गः तस्थौ स्वसन स्वसन रन्ध्र विशाम्बरीशस्तब्धे क्षणोत् मुखो हरिमीक्षमाणम् माणः। तत् प्रथ्यमान बपुषा, श्री कृष्ण की जब इच्छा हुई कालिय के बंधन से निकलने की, तो अपने देह से लपेटा था पूरा शरीर भगवान का। तो श्री कृष्ण प्रथ्यमान बपुषा अपने शरीर को पृथुल करने लगे, बढ़ाने लगे। बाहर से देखने में वो बढ़ा हुआ शरीर नहीं लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण अपने देह को थोड़ा मोटा करने लगे, बढ़ाने लगे। तो बढ़ाने से व्यथितात्म भोग, सांप का शरीर टूटने लगा। जो बंधन लगाया था तो कोई चीज भीतर हो और फैलने लगे तो बंधन तो टूट ही जाएगा। तो बहुत व्यथित हुआ, पैर से लेकर के गर्दन तक, पैर तो भगवान ने बढ़ाया, बढ़ाने से उसका बंधन टूटने लगा, शरीर में दर्द होने लगा, तो स्वयं ही सरक कर निकल कर भाग गया, वो छोड़ दिया। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? पहले तो बच्चा दिखाई देता था, छोटा शरीर वाला, ये बढ़ने क्यों लगा? तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं कि वह स्वयं ही छोड़ दिया। व्यथितात्म भोग त्यक्त्वा, व्यथितात्म भोग, अपना शरीर जब व्यथित हो गया, टूटने लगा, तो त्यक्त्वा वो छोड़ दिया कृष्ण को। और उत्नमय स्वफणान, छोड़ करके अलग खड़ा होकर के अपने फणों को उत्नमय ऊंचा करके, तो उठा करके और फुफकार करने लगा, सांस लेने लगा जोर से। तो उसके मुख को, उसके फण को क्या कहा जा रहा है? विशाम्बरीश। अम्बरीश का अर्थ होता है जहां पर विष पकाया जाता है, किसी बर्तन में विष को पका करके उसको और गाढ़ करते हैं, उसका सत निकालते हैं, तो उसको अम्बरीश कहते हैं। तो उसके जो फण थे, विशेष करके आंखें, वे आंखें तो ऐसी लगती है जैसे विष का अम्बरीश है, विष का पात्र है, बर्तन है, और वहां से धुआं और आग की लपट निकल रही थी आंखों से, इतना क्रोध में हो गया था। अब तक पकड़ करके वही चुपचाप था। तो भगवान के शायद आलिंगन सुख में था कालिए, या ये सोचता होगा कि इसका निधन हो गया तो अब क्या करना है। लेकिन जब शरीर अकस्मात बढ़ा, तब काली ने सोचा है बहुत बड़ा खतरा है, तब दूर होकर के और फण उठा करके पैंतरा ले लिया। अभी जल्दी कृष्ण को कुछ डस नहीं रहा था, एकाएक सावधान हो गया, उसके मन में शंका हो गई कि ये तो कोई अद्भुत बलवान व्यक्ति है। तो इसलिए अब स्वफणान उन्नमय, अपने फणों को ऊंचा कर लिया, भुजंग था ही, और तस्थल, भुजंग शब्द से अर्थ है कि थोड़ा दूर पर होकर के तस्थ हो, खड़ा हो गया। श्वसन, फुफकार कर रहा था, श्वसन रंध्र विशाम्बरीश, श्वसन रंध्र, उसकी जो नाक थी जहां से सांस निकाल रहा था, और आंखें वे विष के बर्तन जैसी थी भयानक। उल्मुख मुख, उसके मुख से चिंगारियां निकल रही थी, लपटे निकल रहे थे। हरिम इक्ष मार, हरि को देखने लगा, इक्ष मार, अब विचार करने लगा कि कौन है, अब तक विचार नहीं किया था। हरिम शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, उस बड़ा श्री कृष्ण मनोहर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ध्यान से देखा, अथवा हरि का अर्थ है कि ये तो हमारा प्राण ही हर लेगा, ये भाव आ गया कालिए का, इससे बचना चाहिए, नहीं तो ये तो हमको ही मार डालेगा। यदि वास्तव में कालिए कृष्ण को शरीर को नहीं छोड़ा होता तो कई जगह शरीर टूट गया होता उसका, जब भगवान बढ़ रहे थे तो देह टूट गया होता, मर गया होता सा। उतना बड़ा भुजंग और फिर भी भगवान के देह बढ़ाने से वो व्यथित हो गया था, इसलिए हरि इक्ष मारा, वो देखने लगा कि ये नया क्या आघात करता है, आक्रमण करता है। अब कालिए नहीं कर रहा है, कालिए तो सांप के स्वभाव में बद्ध होने का अब केवल फुफकार कर रहा है, और आक्रमण नहीं कर रहा है, उसकी दशा कुछ हतप्रभ सा हो गया। तो तम जिह्वया द्विशिखया परिले लिहानम। अब कर्ता भगवान कृष्ण है, उस श्लोक में इसके पहले कर्ता वो है, वो देख रहा है कृष्ण को, कुछ कर नहीं रहा था, केवल फुफकार छोड़ रहा था और प्रत्येक मुख को अपनी जिह्वा से चाट रहा था। सांप है कि जिह्वा के दो शिखाएं होती है, द्वि शिखाएं है, हम लोगों की जिह्वा में कोई शिखा नहीं, लेकिन सांप की जिह्वा ऐसे निकलता है, लंबी होती है और दो शिखा निकली रहती है, तो एक शिखा से इधर का जब बहुत भयानक दृष्टि थी, विष की आग उसकी आंखों से निकलती थी। क्रीड़न अमु परिससार जथा खगेन्द्र व ब्राह्म सोप्य अवसरम प्रसमीक्षमार। तो भगवान श्री कृष्ण खेलने लगे, यहाँ पर कालीय कर्म में है द्वितीय विभक्ति में और श्री कृष्ण प्रथम में है, तो क्रीड़न खेलने लगे, खेलने लगे। जब वो ऐसे खड़ा था तो श्री कृष्ण खेलने का मतलब क्या है, उसके पास जाते थे थोड़ा सा तो वो उनको डसना चाहता था, तो जब डसना चाहता था तो कृष्ण उसके विपरीत दिशा में भागते थे, तो वह भी उधर जाना चाहता था, फिर इधर आते थे, ऐसे इस परिभ्रम परिससार चारों तरफ कृष्ण घूम जाते थे, उसको प्रहार करने का अवसर नहीं मिलता था। तो कालिय डसना चाहता था लेकिन श्री कृष्ण डसने नहीं दे रहे थे और ऐसा भाव व्यक्त कर रहे थे कि वो डसे, यह हतोत्साहित ना हो जाए, श्री कृष्ण की इच्छा थी, इसीलिए वो ऐसे भाव बना रहे थे। वो डसने को आ रहा था तो हाथ से ऐसे मारने की कोशिश करते थे तो दिखाते थे, तो इससे उसका क्रोध और बढ़ता था। यदि कृष्ण भाग जाते तो शायद वो छोड़ दिया होता, अब भाग गया, लेकिन कृष्ण उसके सामने ही अपना उत्साह दिखा रहे थे, उसको डांट रहे थे, चिढ़ा रहे थे और लड़ना चाहते थे, और वो आघात करना चाहता था लेकिन थक गया। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे खगेंद्र, जैसे गरुण जी किसी सांप के साथ खेले, उस तरह से भगवान खेल रहे थे। बहुत बड़ी उपमा दे दी है, गरुण जी के सामने सांप तो कुछ भी नहीं, ये अभी भागा था तो गरुण जी के भय से, और गरुण जी इसको जान से नहीं मारे थे क्योंकि भाई था गरुण जी का, कद्रू का लड़का था और वे बिनता के थे, तो कद्रू और बिनता दोनों कश्यप जी की पत्नियां हैं, भाई था इसीलिए एक पंख से मारा था खूब जोर से, हल्का ही मारा, जोर से नहीं मारा, तो भाग आया था यहाँ। गुरु जी के सामने कोई भी बड़ा से बड़ा सांप कुछ भी नहीं है। समुद्र मंथन में लिखा गया है कि जब गरुड़ जी मंदर पर्वत को लेकर समुद्र तट पर आए तो भगवान ने कहा कि अब आप जाइए, नहीं तो आपके भय से वासुकी नहीं आएगा, जबकि वासुकी बहुत बड़े सर्प है, बहुत भयावह सर्पराज है, सर्पाणम नागानम वासुकिश्चाह। भगवान गीता में कहते हैं मैं सर्पों में नागों में वासुकी, लेकिन वो वासुकी आ नहीं सकते थे समुद्र तट पर जब तक गरुड़ जी थे, कितना भय था, खा जाते बासुकी को, चटनी बनाकर खा जाते, भोजन भी पूरा नहीं होता, पूरा पेट नहीं भरता गरुड़ जी का, इतना विशाल और शक्तिशाली गरुड़ जी, वो तो भगवत अवतार है, तो जैसे गरुड़ जी किसी सांप के साथ खेले वैसे अनंत शक्तिशाली भगवान खेल रहे थे, निर्भय खेल रहे थे। बभ्राम स्वप्यवसरम प्रसमीक्षमाण, तो उसको घुमा रहे थे, उसको शक्तिहीन करना चाहते थे, प्रसमीक्षमाण और प्रसमीक्षमाण। भगवान कृष्ण सांप पर बहुत ध्यान से देख रहे थे, अगर उसकी आंखें विकराल थी तो यह भी विकराल आंख करके पलक को रोक करके उस पर देखते थे, यह भाव है प्रसमीक्षमाण प्रसमीक्षमाण, अर्थात अपनी निर्भयता को व्यक्त कर रहे थे, देख रहे थे, अथवा कालिये के सौंदर्य को या उसके दशा को देख रहे थे कितना क्रोधित है, उसके फण ऐसे उठे हुए थे, भगवान तो छोटे दिखाई दे रहे, और वो अभी जल पर खड़े नहीं हो जाते थे भगवान उनको तो जल में अपने को तैराना था, वो तैरते हुए चलते थे और वो उठाया था फण, उसके लिए स्वाभाविक था। तो इस तरह से घूमते घूमते कुछ उसका बल कम हुआ, कुछ थका घूमते घूमते, और चिंतित हो रहा था कि ये तो विलक्षण व्यक्ति हमसे आज भिड़ गया। वो काली कुछ चिंता में था। तब तक भगवान अपने को जोर से पानी से उछाले, पानी का वेग किसी वस्तु को ऊपर उठाता है तो उसकी सहायता लिए भगवान ऐसे उछले और एक हाथ से मारे उसके फण पर, फण को नीचा किया और उछल कर चढ़ गए। बहुत ऊंचा फण था लेकिन बहुत तरीका से, बहुत बुद्धिमानी से भगवान हाथों से ऐसे किए नवाए और इसके बाद उछल कर चढ़ गए। चढ़ गए फण पर तो फणों को उठाकर डसना चाहता था, उसके एक सब एक फण थे वो डसना चाहता था, लेकिन जो भी फण ऊंचा कर रहा था उसको भगवान फट से मारते थे पैर बहुत जोर से। और अब उनकी नृत्य करने की इच्छा हो गई, ऐसा भागवत में लिखा गया है। भगवान के मुद्रा को समझ जाते हैं देवता लोग, ये भगवान के जो पार्षद है जैसे नारद जी या भगवान इंद्र, ये सब समझ जाते हैं। इंद्रदेव मृदंग बजाने वाले में सबसे श्रेष्ठ, भगवान के नृत्य में और कीर्तन में मृदंग बजाते हैं, नारद जी वीणा बजाते हैं। और भी सब देखे कि श्री कृष्ण हम नाचना चाहते हैं तो सब लोग अपना साज बाज लेकर उपस्थित हो गए, और स्त्रियां अप्सराएं आकाश में आ गईं, विद्याधर सब आ गए, किन्नर चारण ब्रह्मा आदि सब देवता, भगवान शिव भी डमरू लेकर अपना आ गए सब लोग की। अब भगवान नाचना चाहते हैं तो अपनी पूर्ण कला के साथ भगवान का सहयोग करेंगे। अखिल कलादि गुरु ननर्त, समस्त कलाओं के आदि गुरु नाचना चाहते हैं, नाचने लगे। तो कालिये के फण पर भगवान का नृत्य बहुत प्रसिद्ध लीला है, इसलिए मैं इसको आज नहीं कहूँगा, कल विस्तार से कहूँगा, अब समय थोड़ा है तो उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे अच्छा से। बहुत सुंदर लीला है, और इस लीला को जब ब्रजवासियों ने देखा फण पर नृत्य करते हुए तो सबका चित्त कितना उत्साह में भर गया होगा ये सहज समझा जा सकता है। तो नृत्य देखने के लिए सब लोग खड़े हो गए, जो मूर्छित थे वे भी ठीक हो गए, गौएं ठीक हो गई थी, माँ जसोदा नंद महाराज सब अभी देख रहे थे। वैसे माँ जसोदा और नंद महाराज तो अभी भी रो रहे थे, उनको विश्वास नहीं था अंत तक कि ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, इतना ऐश्वर्य देख रहे थे कि सांप के फण पर नाच कर रहा है, लेकिन फिर भी अनिष्ट आशंका बनी हुई थी। भगवान नाचेंगे तो उसके साथ सभी भक्तों को भी वहाँ उस समाज में जा कर के देवताओं के साथ नाचना चाहिए, चाहे तट पर होकर देखना चाहिए। जो उधर कृष्ण नाचने लगे फण पर कालिये के, तो भगवान के सखा भी तट पर नाचने लगे। सारा ब्रज नाच रहा था, सारा देवलोक नाच रहा था। तो श्रीपद सूरदास जी ने गाया है पद, उसको हम लोग देखते हैं। सातवें सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना ये गाई सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज
जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना।
काली नाग के धन पर निरतत काली नाग के
धन पर निरतत
काली नाग के धन पर निरतत काली नाग के
धन पर निरतत
शंकर सन को वीर सबै ब्रज शंकर सन को वीर सबै ब्रज है जमुना के तीर सबै ब्रज है जमुना के
तीर वो तो गाने नहीं आता कोई गा सकता है तो गाइए
Thank you.
नाचने और गाने का समय आ गया है कथा में। कल भी दिन भर नाचना है गाना है, क्योंकि कालिए के फन पर कृष्ण नाच रहे हैं। जिसको नाचने आता है वो कब नाचेंगे, तो ये अवसर है। थोड़ा सा नृत्य गीत हमारे वृंदावन से आए हुए श्री पुरुषोत्तम जी करेंगे, वहाँ पर थोड़ा खाली जगह कर दीजिए और मृदंगी बैठे मृदंग करताल लेकर के और ढोलक से कुछ भी थोड़ा सा हो जाए, वहाँ बीच में थोड़ा सा जगह दीजिए। हरे कृष्णा, और माइक भी ले चलो। कौन गाएंगे? माया बहन जी गाएंगे, ठीक है। एक माइक इधर दीजिए।
वृंदावन में नाचे नंद कुमार देखोरी सखी, वृंदावन में नाचे नंद कुमार देखोरी सखी, वृंदावन में नाचे नंद कुमार देखोरी सखी, वृंदावन में नाचे देखोरी सखी, वृंदावन में नाचे नंद कुमार देखोरी सखी, वृंदावन में नाचे नंद कुमार। मोर मुकुट सिर पर अति सोहे, मोर मुकुट मोर मुकुट सिर पर अति सोहे, मोर मुकुट सिर पर अति सोहे, गल फूलन को हार देखोरी नाचे नंद कुमार, गल फूलन को हार देखोरी नाचे नंद देखोरी सखी, वृंदावन में नाचे नंद कुमार देखोरी सखी, वृंदावन में नाचे नंद कुमार। पीताम्बर कटि बीच विराजे, पीताम्बर कटि बीच विराजे, पीताम्बरी कटि बीच विराजे, पीताम्बर कटि बीच विराजे, मुरली अधर सुधार देखोरी सखी नाचे नंद कुमार, मुरली अधर सुधार देखोरी सखी नाचे नंद कुमार, देखोरी सखी वृंदावन में नाचे नंद कुमार, देखोरी सखी वृंदावन में नाचे नंद कुमार। वीणा बाजे सरंगी बाजे, वीणा बाजे अरे वीणा बाजे सरंगी बाजे, वीणा बाजे सरंगी बाजे, कोरी बाजे खड़ताल देखोरी सखी नाचे नंद कुमार, कोरी बाजे खड़ताल देखोरी सखी नाचे नंद रे, देखोरी सखी वृंदावन में नाचे नंद कुमार, देखोरी सखी वृंदावन में नाचे सखियों के संग राधा नाचे, सख वाली कृष्ण भगवान की जय। बाज रही देखो बांसुरिया, हाय सखी नंद नंदन आए हैं। बाज रही देखो आए सखी नंद नंदन आए, बाजी रही देखो बांसुरिया, आए सखी नंद नंदन आए। बाजी रही देखो बांसुरिया, आए सखी नंद नंदन आए। माधुरी मूरत सावरी सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत मा। अरे माते टी का चंदनिया है कटी मन को भाए। जीवन मन को भाए, तेरे जीती दीवन मन को भाए। हाय नैनों में सारे गजरिया आए, सखी नंदी नन आए।
बोले वृंदावन बिहारी ला।